मंदिर है, परंतु साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए आपने अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ सेवा हेतु समर्पित किया। मेरे ख्याल से आप 30 साल से भी अधिक समर्पित रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आध्यात्मिक सेवा में जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो विंग है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, उसके आप पदाधिकारी हैं और आप समय समय पर ईश्वरीय सेवा देश विदेश में भी भ्रमण करते हैं, तो उनके ही मुखारविंद से हम यज्ञ की जो सोशल सर्विसेज है और यज्ञ के बारे में इस संस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, हम करताल ध्वनि से उनका स्वागत भी करेंगे।
ओम शांति।
ओम शांति। जहां पर पिछला लेक्चर समाप्त हुआ वहीं से ही हम लोग एक बार पुनः शुरू करेंगे। गहरी श्वास अंदर एक बार लेंगे और जैसा हम सब ने सुना है कि जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1936 में, तो उस समय ब्रह्मा बाबा सब ब्रह्मावत्सों के साथ बस अंदर श्वास भर के और श्वास निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और उसका केवल ध्वनि ही नहीं करेंगे बल्कि उसके धर्म में स्थित होंगे, अर्थात श्वास निकालते हुए ओम कहते हुए और अंदर ये महसूस करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो पहले हम सब लोग एक गहरी श्वास अंदर लेते हैं। ओ शांति। ओम शांति, ये एक ऐसा महामंत्र है जिसके अंदर आज के विश्व की सभी समस्याओं का हल आ जाता है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो आत्मिक स्थिति की अनुभूति करने से ही सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर समस्या की जड़ है देह अभिमान। जब हम अपने को देह समझते हैं, मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है, या मैं स्त्री हूँ ये पुरुष है, तो दैहिक दृष्टि जाती है और मन के अंदर विकारी भावनाएं पैदा होती हैं। जब हम समझते हैं मैं मालिक हूँ, बड़ा हूँ, ये छोटा है, साधारण है, नौकर है, इसे मेरी बात माननी चाहिए, नहीं मानते हैं, क्रोध का भाव पैदा होता है। इसी प्रकार से जब हम मैं और मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरा मकान, मैं और मेरा में जब आ जाते हैं, लोभ और मोह की भावना अंदर आ जाती है, यह भी एक मनोविकार, बहुत बड़े विकार है। और इसी कारण से जब हम अपनी सत्ता के नशे में रहते हैं, मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, युवान हूँ, शक्तिवान हूँ, तो अहंकार आ जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि, यह सब जो भावनाएं हैं, इन सब के वशीभूत होकर ही मनुष्य जब कर्म करता है तो वो विकार बन जाते हैं, विकर्म होते हैं और वो ही दुख का कारण होते हैं। और इसके विपरीत जब हम ओम शांति कि मैं आत्मा हूँ, यह देह तो मेरा वस्त्र है, देह रूपी वस्त्र मैंने पहना है और इस देह रूपी वस्त्र से इस सृष्टि नाटकशाला में मैं खेल खेल रही हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, तो जब इस स्थिति में स्थित होते हैं तो क्या होता है, फिर सारे विकार जैसे समाप्त हो जाते हैं, अंदर भाईचारे की भावना पैदा होती है, आत्मिक रूप से हम सबको भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं और दैहिक दृष्टि से सबको भाई बहन के नाते से देखते हैं, तो कोई भी विकार दुख अशांति की बात नहीं रहती। बस यही मुख्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टीचिंग है। आप सब लोग थोड़ा बहुत तो इससे परिचित होंगे, लेकिन इसके इतिहास में मैं कुछ बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाना चाहूंगा, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका ये बीके ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, जो कि जीवन को ही बदल देता है, ये यहाँ एक ओम शांति भवन आप सबने देखा ही है और वहां का ये चित्र है। और बीके इंस्टीट्यूशन एट ए ग्लांस क्या है नटशेल में, उसका अब हम एक सफर तय करते हैं। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना चाहती है। किस आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा? आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेट है, जीमेल, मेल्स वगैरह है, इंटरनेट सबके द्वारा, लेकिन इन्फॉर्मेशन होते हुए भी हम अंदर से बहुत कमजोर हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पैक होता है, उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जानते हैं थ्योरिटिकली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होते हुए भी कमजोरियों के वशीभूत होकर हम स्मोकिंग कर लेते हैं और अनेक अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बचपन से ही हम पढ़ते सुनते आए हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं तो ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, निकलते हैं, जो मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर को, निर्णय लेने की क्षमता को कुंठित कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इस कारण से मनुष्य सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाता। तो जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अक्सर कह देते हैं क्या करें, मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन क्रोध आ जाता है, मैं बोलना तो ये शब्द नहीं चाहती थी लेकिन मुंह से ये शब्द निकल गए। क्यों? क्योंकि हम अंदर से ना आत्मा बहुत कमजोर हो गई है। हमारी बिल्कुल वही स्थिति है महाभारत प्रसिद्ध दुर्योधन की, जिसकी दुर्योधन कहा करता था, क्या कहता था, मैं जानता हूं सत्य क्या है, मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं अपने को असमर्थ पाता हूं, कमजोर हूं, सत्य का मार्ग मैं नहीं ले सकता जीवन में। मैं जानता हूं असत्य क्या है लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आज बिल्कुल वही स्थिति हम सभी की है। थ्योरेटिकली हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए आदि आदि, लेकिन आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि बस, किसी ने सही कहा है, ये विज्ञान का युग है ना, कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। बाहर तो बहुत उजाले हैं, विज्ञान ने बहुत रोशनी कर दी है, लेकिन दिल के अंदर जो रोशनी होनी चाहिए वो रोशनी ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए अंदर अंधेरा है, इसलिए दोनों की मैचिंग नहीं है। तो इसीलिए आज हमारा लक्ष्य यही है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा हम एक ऐसे नए समाज का निर्माण करें जो एक मूल्यनिष्ठ समाज हो, और वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक मुख्य लक्ष्य है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और जहां आप बैठे हैं ये इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ इसका ओवरसीज जो विदेशों का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है वो लंदन में है, जिसका कि चित्र आप ये नीचे यहां देख रहे हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व के लगभग 140 देशों में केंद्र हैं, अलग अलग पांचों उपमहाद्वीप में, ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स, और ये कुछ उनका यहां पर चित्रण किया गया है, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, केनिया, लंदन, जर्मनी आदि आदि अलग अलग स्थानों के ये यहां पर चित्रण किए गए हैं। 140 से अधिक देशों में यह संस्था है। इसका लक्ष्य क्या है, अवर मिशन एस्टेब्लिशिंग ए वैल्यू बेस्ड, एक ऐसे मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, मनुष्यों को जीवन को परिवर्तित करना सुख शांति के लिए, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, गौरवशाली इतिहास है, उसको वापस लाना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न करना, साथ में हर मनुष्य के अंदर जो डिविनिटी है, आध्यात्मिकता है, उसको फिर से पुनः जागृत करना, और साथ में समाज के अंदर जो आज बहुत कमी कमजोरियां व्याप्त हैं, ड्रग्स एडिक्शन है, अंधविश्वास है आदि आदि, उन सब से समाज को मुक्त कराना, ये सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक हमारा मिशन है, लक्ष्य है। और अब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस इतिहास की तरफ चलते हैं, पिछले 80 साल का इतिहास। आपको जैसे बताया गया है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1936 से 2000 साल तक के इस इतिहास को हम जस्ट देखते चलेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने को मानसिक रूप से अपने को वही स्थिति में अनुभव करते हुए चलेंगे, तो उस इतिहास का हम संपूर्ण रीति से आनंद भी उठा सकेंगे। यह कहानी शुरू होती है हैदराबाद सिंध से, वहां जो भारत का उस समय अखंड भारत का एक हिस्सा था लेकिन वर्तमान समय पाकिस्तान का एक पार्ट है। दादा लेखराज एक बहुत धनवान, एक हीरे जवाहरात के व्यापारी हुआ करते थे हैदराबाद सिंध में, और बहुत धन धान्य था, लेकिन फिर भी उनको खोज थी भगवान की कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो। इसके लिए वो बहुत दान पुण्य भी किया करते थे, दानी प्रवृत्ति के थे, बहुत गुरु गोसाई साधु सन्यासी आदि को तो दान करते ही थे, लेकिन समाज के अंदर जो गरीब परिवार हुआ करते थे उनकी बच्चियों की शादी, उसमें बहुत मदद करना, स्कॉलरशिप गरीब के बच्चों को देना, सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल सर्विस में उनका पैसा बहुत जाया करता था। इतने धनाढ्य होते हुए भी बहुत दानी प्रवृत्ति के और नम्र स्वभाव के थे, ऐसे ये दादा लेखराज जी। और भगवान की चाह थी उन्हें, ऐसे में उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए। उन्होंने बहुत गुरु किए हुए थे, एक गुरु किया जब भगवान का रास्ता नहीं मिला, दूसरा किया, तीसरा किया, इस तरह 12 गुरु उन्होंने किए, लेकिन ये करते हुए भी उनकी चाह थी मुझे भगवान मिले, ईश्वर का साक्षात्कार हो। और इसी चाह में उन्होंने पूरा देश भ्रमण किया, पूरा कोई भी आध्यात्मिक स्थल छोड़े नहीं, सब तरफ गए। इसी चाह में एक दिन वो बैठे हुए थे, उन्हें एकाएक ही विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। और ये विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार उन्होंने देखा, विष्णु जी बस उनके सामने आए और उनके मुंह से आवाज निकल रही थी, क्या? अहम चतुर्भुज तत्व, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे स्वरूप हो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे स्वरूप हो। वो तो कुछ समझ नहीं सके, विष्णु जी का दिव्य साक्षात्कार करके बहुत खुश हो रहे थे, और उन्हें अंदर में आया जब ध्यान से वो नीचे उतरे तो उन्हें आया कि गुरु की कृपा हुई है मेरे ऊपर, शायद गुरु जी ने मुझे भगवान का ये दिव्य साक्षात्कार कराया है। वो तुरंत जब ध्यान से नीचे आए, दौड़े दौड़े गुरु के पास गए, गुरु जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और ये आज मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ। लेकिन उस समय की बात है, गुरु जी भी आज का समय होता कलयुग तो शायद गुरु पूरा क्रेडिट ले लेता, हाँ मैंने ही तुम्हें साक्षात्कार कराया, लेकिन गुरु भी उस समय रजोगुणी और सतोगुणी की स्टेज में थे। उसने कहा कि नहीं, मैंने खुद ही अभी तक भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है, तो मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, ये तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है कि तुम्हें विष्णु चतुर्भुज जी का दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो उनकी गुरु के प्रति आस्था भी बहुत अच्छी हुई, और साथ ही साथ उन्हें ये हुआ कि भगवान ने ही मुझे ये दिव्य साक्षात्कार कराया है। एक साक्षात्कार से बस एक तो उनका जीवन परिवर्तन तब से होना शुरू हुआ। कुछ दिनों में उन्होंने दूसरा साक्षात्कार किया, जीवन में 3 साक्षात्कार उन्होंने किए थे। दूसरा साक्षात्कार किया, बस ये कलयुगी सृष्टि का पूरा, इसका महाविनाश हो रहा है, ایک طرف ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میسائلز، راکٹ دنیا میں چل رہے ہیں، یورپین دیشوں کا، امریکن، بھارت کے باہر، وہ سب میں بہت منشے جو ہے مرتیو کو پا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک طرف ہائیڈروجن بم، میسائل آدی، یہ وناش کے سادھنوں سے منشے مرتیو کو پراپت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دوسری طرف دیکھا پراکرتک آپداؤں کے دوارا وناش. کہیں پر دھرتی ہل رہی ہے، بھوکمپ آ رہا ہے، کہیں پر سائیکلون آ رہا ہے، بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں پر سونامی ہے، سمندر اچھال کھا رہا ہے. اس سمے 1936-37 میں کسی نے بھی گلوبل وارمنگ کی بات یا کلائمیٹ چینج، موسم پریورتن کی بات نہیں سنی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. لیکن بابا کو اس سمے یہ ساکشاتکار ہوا کہ یہ سمندر اپنی سیمائیں توڑے گا اور سمندر کی لہریں بھی 20-25-30 فٹ تک اور اونچے اٹھیں گی. اتنا ہی نہیں، سمندر کی سطح بڑھتی جائے گی اور الٹیمیٹلی اپنے کنارے جو بسے ہوئے بڑے بڑے دیش ہیں، شہر ہیں، ان سب کو اپنے اندر سما دی. یہ سب بابا نے دیویہ ساکشاتکار میں دیکھا. تو ایک طرف وناش میں تین درشیہ وشیش دیکھے، ایک طرف پراکرتک آپداؤں کے دوارا وناش، ارتھکویک، فلڈ، فیمن، سائیکلون آدی آدی، دوسری طرف ایٹم، ہائیڈروجن بم، میسائلز کے دوارا، اور تیسرے طرف انہوں نے دیکھا سیول وار کے دوارا. دیشوں کے اندر سیول وار ہیں، بھارت کے اندر وشیش کر کے سیول وار، الگ الگ کمیونٹی، الگ الگ دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. تب 1936-37 میں تو 47 میں جو بھارت کا وبھاجن ہوا اور کتنا خون ناک کھیل ہوا تھا، آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان سب نے یہ دیکھا بھی ہوگا، سنا ہوگا کس طرح بس لاکھوں کی سنکھیا میں منشیوں کو کاٹ ڈالا گیا، مار دیا گیا. یہ سب درشیہ بابا نے 1936 میں ہی دیکھا. اور اس سمے جب اتنا بھینکر وناش دیکھ رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے بابا کی آنکھوں سے جیسے آنسو نکلنے لگے اور بس، ہے پربھو اتنا بھینکر وناش، ہے پربھو بس مجھ سے نہیں سہا جا رہا، پربھو بس اب اپنا موہنی روپ دکھائیے. بھگوان گیتا میں جو ارجن کے پرسدھ مہا واکیہ ہے اس روپ میں ہی انہوں نے جیسے ان کے منہ سے نکلا. اور پھر تیسرا انہوں نے ایک درشیہ دیکھا، اسے دیکھ کر کے تو ان کی طبیعت بالکل خوش ہو گئی. انہوں نے دیکھا بہت نئی ستیوگی دنیا ہے، بہت بڑھیا، اوپر آسمان میں سٹارز سٹار ہیں، تارے تارے ہیں، وہ تارے نیچے آ رہے ہیں، اور وہ تارے نیچے آتے ہی کوئی راجکمار کا روپ لے لیتا ہے، کوئی راجکماری کا روپ لے لیتا ہے، اور نیچے وہ کھیل رہے ہیں. بڑا ستو پردھان درشیہ ہے، پرکرتی کے پانچوں تتو، جل، اگنی، وایو، پرتھوی، آکاش، اتی ستو پردھان ہیں. سب طرف موسم سہانا اور خوشی خوشی کی لہر واتاورن. بس اس درشیہ کو دیکھ کے بابا خوش ہو گئے. واستو میں یہ سٹار کیا، وہ آتمائیں تھیں. آتما جہاں پرم دھام میں رہتی ہیں وہاں سے وہ آتما آ رہی ہیں، اور ستیوگ میں آ کے کوئی راجکمار کا روپ میں جنم لے رہا ہے، کوئی راجکماری کے روپ میں، اور بس وہ دنیا، خوش نما دنیا دیکھ کے بابا کی بھی وانچے کھل گئے. اور بس بابا اس درشیہ کو دیکھنے میں تلین تھے، اتنے میں ہی ان کے کانوں میں آواز سنائی پڑی. وہ ساکشاتکار کر رہے تھے، دھیان سے نیچے نہیں اتر رہے تھے، دھیان میں ہی تھے، اسی میں انہوں نے آواز سنی، تمہیں ایسی دنیا بنانی ہے، تمہیں ایسی دنیا بنانی ہے. بس دادا لیکھ راج کو ایک دم یہ ہوا، کون دھیان سے نیچے اترے، وہ کون تھا، کس کی آواز تھی، کتنا سنہرا درشیہ تھا، میں ایسی دنیا کیسے بناؤں گا، مجھے اوپر سے آدیش ہوا ہے تمہیں ایسی دنیا بنانی ہے، لیکن میں کیسے بناؤں گا، میں تو جانتا بھی نہیں کیسے بنائی جاتی ہے دنیا. بالکل نکھالس بھاؤ سے بابا نے کہا. لیکن پھر دھیرے دھیرے بابا کو اپنے ہیرے جواہرات کے ویاپار سے ویراگیہ ہونے لگا. بس وہ ہیرے دیکھتے تھے، ہیرے انہیں ہیرا نہیں پتھر نظر آتے تھے، اور جب سے انہیں آدیش ہوا تھا تمہیں سچے سچے ہیروں کا ویاپار کرنا ہے، मनुष्य आत्मा रूपी जो सच हीरा है उसे एक सच्ची चमक प्रदान करनी है। तो बस उन्होंने धीरे धीरे उन्हें धंधे से पूरा वैराग होने लगा। पार्टनर को बोला भाई जितना भी पैसा हो मुझे पार्टनर दे दो, तुम जो हिसाब करोगे मुझे मंजूर है। उस समय बाबा का कहां नेपाल कहां पर उदयपुर अलग अलग पूरे इंडियन स्टेट्स में राजाओं महाराजाओं के साथ ये सब हीरे मोती के व्यापार चला करते थे। वहां के राज परिवार में बाबा जाके उनके सारे ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह बनाया करते थे। लेकिन सबसे धीरे 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 बाबा को वैराग आ गया। पार्टनर को बोला बस अब तो मैं यह धंधा नहीं कर सकता, अब मुझे सच्ची आत्माओं का धंधा करना है, उनको आत्मिक जागृति लानी है। इस तरह विजन ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व को परिवर्तन कैसे करना है, यह बाबा को जब दृश्य दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे बाबा में और आगे परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से बाबा एक दिन अपने गुरु की सभा में बैठे हुए थे। गुरु को उन्होंने निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया हुआ था हैदराबाद सिंध में, और वहां पर गुरु आए थे, गीता पाठ कर रहे थे, बाबा भी सुन रहे थे। इतने में सुनते सुनते बाबा को पता नहीं अंदर से क्या हुआ, बाबा वहां से उठे और उठ करके बाबा अपने कमरे की तरफ गए और कमरे में जाके वहां अपने कमरे में बैठ गए चारपाई पर। तो उनकी पुत्रवधू थी लड़के की मिसेस वाइफ और बहू को हुआ आज दादाजी कैसे गुरु की सभा से उठ के जा रहे हैं, कभी भी गुरु अगर बोलता हो बाबा कभी नहीं जाते थे, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, तबीयत ठीक है उनकी कि नहीं। वो भी उनके पीछे पीछे गई। उन्होंने जाके क्या दृश्य देखा वो इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने देखा बाबा बैठे हुए हैं और बस ऊपर से जैसे कोई ज्योति आई और बाबा के यहाँ पर भ्रकुटी के बीच में यहाँ पर लाल लाल प्रकाश हो गया, सारा कमरे के अंदर लाल लाल प्रकाश हो गया। और वो लाल प्रकाश जो था उसने अपने मुंह से ही ब्रह्मा बाबा के मुंह से अपना परिचय दिया और बस ये वास्तव में निराकार शिव परमपिता परमात्मा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता थी और उनके अंदर प्रवेश करके बाबा के मुंह के द्वारा उसने उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। भावार्थ कि मैं आत्म निजानंद, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है, शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। जो परमात्मा के लिए कहते हैं वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। तो भगवान पहली बार सृष्टि पर आकर के, क्योंकि भगवान तो निराकार है, कैसे वो बोलेगा जब तक मुख का आधार न ले, तो उसने इन ब्रह्मा तन का नाम, ये दादा लेखराज थे और तब बाबा ने इनका नाम भी परिवर्तन किया, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं नई सृष्टि की स्थापना हुई, इसलिए बाबा ने, शिव बाबा ने इनका नाम दिया ब्रह्मा। और इस प्रकार से दादा लेखराज जी के जीवन में परिवर्तन हुआ और ये निराकार शिव परमपिता परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और प्रवेश करके अपना पूरा का पूरा परिचय दिया। और इस प्रकार से 1936 में जो आध्यात्मिक ज्ञान का एक बीज लगाया गया था, आज वो पूरे विश्व भर में पांचों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है और एक साधारण सा बीज वो आज इतना विशाल वट वृक्ष बन गया है जिसके करीब 9000 के करीब ब्रांचेस हैं 140 देशों में और जिसके हेडक्वार्टर में आप लोग बैठे हुए हैं। ये निराकार परमपिता शिव परमात्मा और जो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है। और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा बाबा ने सारा समेट करके एक बोर्डिंग शुरू किया और वहां पर बस ये ईश्वरीय ज्ञान का थोड़ा प्रचार और प्रसार। जो भी ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आते थे बस बाबा को देखते थे, ज्ञान सुनते थे, ध्यान में चले जाते थे। बाबा को देखते उन्हें किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को नारायण का साक्षात्कार होता था, और बस बाबा के पास आकर के ना एकदम ध्यान मग्न हो जाया करते थे। चारों तरफ सिंध में एक गूंज उठ गई, अरे दादा लेखराज वहां तो जो जाता उसे भगवान के दर्शन होते हैं। और बस पूरी लहर हो गई, अखबारों में छप गया, विदेशों में छप गया ये दादा लेखराज के जीवन का परिवर्तन। लेकिन साथ साथ एक विशेष बात थी कि बाबा ने कहा कि जिसको भी ये ज्ञान सुनना है वो ज्ञान सुनने आए, लेकिन जीवन के अंदर उसे पवित्रता की धारणा करनी होगी, ब्रह्मचर्य की धारणा करनी होगी। और हैदराबाद सिंध में तो वहां से ये शुरू हुआ, और अब अक्सर करके पुरुष वर्ग तो विदेशों में धन कमाने के लिए चले जाते थे, परिवार वहां रहा करता था, और जब वो आते थे तब उन्हें पता चला तो उनके मन में भी जीवन में भी कई प्रकार के द्वंद हुए और कई प्रकार का अपोजिशन वगैरह भी हुआ। बहुत डिटेल में तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब वो कन्याएं कुछ एक ग्रुप फोटो है, तो बस यही जो आज दादियां हैं हमारी 80 वर्ष हो गए, उस समय ये कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 12, 15, 8, 20 साल इस आयु के थे। और चूंकि पवित्र कन्याएं थे और पवित्र, तो बस बाबा के सम्मुख आते थे, ध्यान में चले जाते थे, और बस घर से सब लिखा करके लाए कि भाई हम ज्ञान अमृत सुनने के लिए बाबा के पास यहां जाते हैं। और इस प्रकार से ये संस्था ये शुरू हुई। उस समय इसका नाम ओम मंडली था, और जैसे आपने सुना ओम की ध्वनि कहा करते थे, करा करते थे सब लोग, तो इसीलिए ओम मंडली नाम पड़ गया और ये संस्था शुरू हुई। तो बाबा ने 14 वर्ष तक उनके द्वारा इन कन्याओं को 1936 से लेकर लगभग 1950 तक वहां पर, हाँ 51 तक वहां पर बाबा रहे, हैदराबाद सिंध में, कराची में। और साथ साथ जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का वो हिस्सा हो गया, और यहाँ पर भारत में इन कन्याओं के माता पिता आदि अधिकतर हिंदुस्तान में थे, भारत में। तो उन लोगों को चिंता होती थी हमारे बच्चों का, क्या वो वहां पर हैं। तो बहुत बाबा को उन्होंने भी बोला, लेकिन वहां पर इतना खून खराबा होते हुए भी इनका बाल बांका नहीं हुआ। सब वहां के जो भी मुस्लिम संप्रदाय थे, मिनिस्ट्री थी, वो सब कहते थे आप तो खुदा के बंदे हो और आप लोग अपना ये चालू रखो, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कुछ नहीं होगा। और पार्टीशन के बाद भी 3 साल तक वहां पर रहे, कुछ नहीं, बहुत आराम से ये वहां रहे। लेकिन फिर भी सबके आग्रह पर यहां पर इनका भारत में स्थानांतरण हुआ 1951 में, और यहीं पर माउंट आबू में ये यहां आकर के स्थापित हुए। और जब यहां पर आए इसका नाम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा, और ये ब्रह्मा बाबा के ही त्याग, तपस्या, सेवा, उनका बलिदान, उसके आधार पर ही आज यह संस्था इतनी बड़ी है। केवल एक ही मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि दादा लेखराज, और जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से ये संस्था की स्थापना हुई। और जब स्थापना हुई तो हमारा विजन क्या है, इस संस्था का एक लक्ष्य विजन ये है, हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना करना, नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना, जहां सब प्रकार के तन मन धन सम्मान, प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान, हर प्रकार के सुख होंगे, ऐसे एक समाज का निर्माण करना, यह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह लक्ष्य है। तो ये तो नटशैल में थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बताया गया। और अब इस संस्था की कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा, इसका एक विशेष लक्ष्य है राजयोग मेडिटेशन सिखाना, वो तो आपने पिछले 3 दिनों में देखा भी होगा, सुना होगा राजयोग मेडिटेशन। और राजयोग के द्वारा मुख्य तो यह है आध्यात्मिक सशक्तिकरण, अपने आत्मा के अंदर बल भरना, जिससे कि हम जो करना चाहते हैं वो करें और जो छोड़ना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, वो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा न हो। आज भले काफी हद तक उल्टा है, हम जो नहीं करना चाहते, मन गवाही नहीं देता, लेकिन कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के हम वह कार्य कर लेते हैं और फिर अनेकानेक विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो इस कारण से आवश्यकता ये है राजयोग के द्वारा। तो ये राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना। राजयोग है क्या? योग है एक अंदर की यात्रा। बाहर की यात्राएं तो बहुत करी हमने, गंगोत्री, जमुनोत्री, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि आदि सारे धाम करे होंगे, सब तीर्थ करे होंगे, लेकिन सब करते हुए भी जो शांति हमारे गले का हार है उसको हम प्राप्त पूरा नहीं कर सके। इसलिए ये एक अंदर की यात्रा है, अंदर की यात्रा राजयोग, ए जर्नी विदिन, अंदर यात्रा करें। और राजयोग ये मेडिटेशन ये एम्पावर्स करता है, मनुष्यों में कई प्रकार की शक्तियां लाता है। मैं इसे रिपीट नहीं करता, पिछले तीन दिनों में आपने क्लासेस भी की होंगी। इसके अंदर सहन करने की शक्ति आती है, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जीवन में परखने की शक्ति, जिससे कि सही समय पर हम सही निर्णय ले सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और ये सब कैसे करते हैं? योग के द्वारा। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं, वेरियस कोर्सेज। एक पॉजिटिव चेंज फॉर यूथ, युवाओं के लिए जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। लाइफ मैनेजमेंट स्किल, जीवन को किस प्रकार से मैनेज किया जा सके उसकी कला, जीवन जीने की कला, ये एक हमारा एक विशेष स्पेशल कोर्स होता है। सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, कि कैसे बाहर की लीडरशिप की तो हम देखते हैं, लेकिन हम कैसे अपने आप को चला सके, सेल्फ को मैनेज, आत्मा। बाहर का तो हम सब जानते हैं कि बाहर किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अंदर हमें अपने को चलाना आए उसके लिए सेल्फ मैनेजिंग, स्ट्रेस फ्री लिविंग, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट, एजुकेशन ऑन वैल्यूज आदि आदि। इस प्रकार से अनेक अनेक चिल्ड्रंस अपलिफ्टमेंट, क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर अगर ये संस्कार डाले जाएंगे तो वो एक बहुत श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए जहां एक और वयस्क वर्गों को की तरफ ध्यान दिया जाता है, वहां पर बच्चों की तरफ भी इसका ध्यान होता है, और साथ साथ महिलाओं के, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि आधी से अधिक जनता महिला है, तो महिलाओं में अगर जागृति आ गई, सशक्तिकरण हुआ, तो पूरे संसार में हम इस बात को फैला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे लगभग 20 से अधिक कोर्सेज हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, अभी हम सब जानते हैं विज्ञान ने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन आवश्यकता क्या है? विज्ञान की तरक्की के साथ साथ ये अंदर की हमारी उन्नति हो, तरक्की हो। और ये न होने की वजह से आज प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं। देख रहे होंगे कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं पर फ्लड है, कहीं सुनामी है, साइक्लोन्स हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन कोर्स विशेष करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके अभियान निकाले जाते हैं और जगह जगह इन कोर्सेज का आयोजन किया जाता है। मैनेजिंग प्रेशर विद प्लेजर, ये उन पर वर्कशॉप, कि जीवन में प्रेशर तो होगा, काम का होगा, संबंधों का तनाव होगा, सब प्रकार का, लेकिन खुशी के साथ हम उन सब चीजों को कैसे लेकर के आगे बढ़ते चले। ट्रेनिंग सब जीवन के सभी वर्गों के लिए, चाहे पुलिस वर्ग हो, सिक्योरिटी हो, मैनेजर्स हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, अरे के लिए ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। फिर साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग, हाँ, और IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेजेस, और कॉमर्स, साइंस, आर्ट, तो एजुकेशन फील्ड में जाकर के स्टूडेंट्स को इस एज में ही अगर ऐसे संस्कार दिए जाते हैं तो वो एक और अच्छा नागरिक बन सकते हैं। ये उनके लिए प्रोग्राम वगैरह की बात है। और कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स कैसे करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कैसे समाज के सभी वर्ग है? दादियों के साथ राजीव गांधी आदि, पोप और ये सब खड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए थे, उन्होंने कहा था विज्ञान और धर्म ये दोनों को मिल करके चलना चाहिए, ये एक दूसरे के शत्रु नहीं है, बल्कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। एक दूसरे के बिना अंधा है एक लंगड़ा है। अंधे लंगड़े की कहानी तो हम सबने सुनी है ना। अंधा और लंगड़ा दोनों हैंडीकैप है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर चाहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचना तो क्या करना होगा, दोनों एक दूसरे को सहयोग देके। अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर बैठा लिया और अंधा ताकतवर था शरीर रूप से, लंगड़ा रास्ता बताता जाता था, उसके तो दोनों आंखें थी, अंधा चलता जाता था। तो इस तरह से विज्ञान और आध्यात्मिकता, न तो हमें धर्म के नाम पर दुनिया को छोड़ के चले जाना है हिमालय पर्वत पर कहीं पर या गुफाओं में कंदराओं में जाके भगवान को याद करें, नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए वहां पर और विज्ञान के जो साधन हैं उन सब का सदुपयोग करते हुए करना है। नीचे बताया गया जब ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे वो भी यहां पर आए थे और किस प्रकार से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, मैडम सादात और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आदि, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के यहाँ पर फोटो है। साइंस कॉन्फ्रेंस हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये मेगा इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट, वो उन सब के उद्घाटन। देखिए ये वर्तमान समय दादी जानकी जी का ये फोटो है, ये अभी वर्तमान समय चीफ हैं, 100 से ज्यादा इनकी आयु, 101 वर्ष की है, वर्तमान समय अभी लंदन में है। और ऐसे अनेक अनेक मेगा इवेंट्स जो है, बड़े बड़े प्रोग्राम, उनको भी ये संबोधित करती हैं और इस प्रकार से यह कार्यक्रम जन साधारण की जागृति के लिए, जहां एक ओर ऐसे मेगा प्रोग्राम होते हैं वहां दूसरी ओर स्पेशल कोर्सेज भी आयोजित किए जा सकते हैं। और लीडर्स, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं भाई समाज का जो लीडर वर्ग है वो जग जाए तो बाकी सब और जग जाए। हम सब भी देख रहे हैं अगर हमारे नेतागण वो होते हैं, गांधी जी के समय की बात और उसके बाद नेहरू जी आदि आदि के, आप सब उस बात के गवाह हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सब जो प्रोग्राम होते हैं लीडर्स भी बुलाए जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी, साधारण वर्ग वाले भी, रूरल भी। तो ये बताया गया वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब आए, ये राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये सोनिया गांधी जी आदि आदि, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये तो कई बार यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके विशेष इन कहा करते थे मुझे बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, और ये इनके द्वारा जीवन के अंदर काफी कार्य हुए कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर के चला जाए। ये अब्दुल कलाम जी का खास एक संदेश था यहाँ पर। और ये इंटरफेथ कोऑपरेशन, जहां एक और लीडर, पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं मदर टेरेसा, ये पोप, पूरे विश्व भर के जो क्रिश्चियनिटी के चीफ हैं वो आए थे बॉम्बे में, उनको ये साहित्य आदि दिया गया। ये श्री श्री रविशंकर जी और अलग अलग जो दलाई लामा आदि, ये सब कॉन्फ्रेंसेज कम्युनिटी सर्विस की, अलग अलग कम्युनिटी के है? जब भी कोई खास आपदा आती है, सुनामी आई थी, कच्छभुज का अर्थक्वेक हुआ था, बस सुबह 8-8:30 बजे कच्छभुज का अर्थक्वेक हुआ और कितना भयंकर विनाश जैसा, और शाम को 4 बजे तो यहाँ से हमारे ट्रक निकल गए थे सारी रिलीफ सामग्री लेकर के, जिससे कि बहुत जल्द से जल्द उनको राहत पहुंचाई जा सके। तो देखिए हमारा केवल आध्यात्मिक ही ये कार्य नहीं है, कि ये देना, बल्कि समाज के सभी वर्गों को जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो नीडी ड्यूरिंग द सुनामी में, किस प्रकार से ये दूसरे वर्गों के साथ हमारी बहनें भी आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं और एक इस प्लेनेट को, इस ग्रह को, पृथ्वी को हम एक बहुत सुंदर ग्रह बना सकें। राजस्थान में पानी की कमी है, हमारे टैंकर रिमोट विलेजेस में जाकर वाटर सप्लाई गर्मी के सीजन्स में विशेष किया करते हैं। साथ ही साथ जो भी ऐसे गरीब वर्ग है उन सबको, जो भी नीडी हैं उनको हर प्रकार से सहयोग देना। ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट रैलीज का आयोजन करके ये रैली के द्वारा उन्हें संदेश दिया जाता है। यहीं पर ही हमारा एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल विद ए डिफरेंस, ग्लोबल हॉस्पिटल, देखा होगा शायद आप लोगों ने, देखा है ना। तो उसकी विशेषता ये है कि अस्पताल तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन इस अस्पताल में मेडिकेशन, दवाई के साथ साथ मेडिटेशन, उस पर भी विशेष बल दिया जाता है। और यहाँ का रिकॉर्ड है कि कोई बीमारी, अगर कोई त्रस्त व्यक्ति रोगी आता है और जगह, अगर वो एक सप्ताह के अंदर अगर रिलीव होता है, यहाँ पर 5.5 दिन में उसका दवाई ठीक। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो दवाइयां कैसे इलाज होता है, लेकिन सबसे बड़ी पावर है विल पावर। उस रोगी के अंदर ये इच्छा शक्ति इतनी डेवलप कर देना कि नहीं, मैं आत्मा, ये शरीर मेरा वस्त्र है और मैं आत्मा अगर शक्तिशाली होंगी, मेरा ये शरीर रूपी वस्त्र भी स्वच्छ होगा, शक्तिशाली होगा। तो मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों सीखते हैं तो कई बीमारियों से बहुत जल्दी शफा, हीलिंग माइंड एंड बॉडी। ये अलग अलग मेडिकल विंग के द्वारा भी ये कार्यक्रम होते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो है। और ये अलग अलग विश्व के नेता, देसमंड टूटू अफ्रीकन लीडर, नेल्सन मंडेला, ये सब के अलग अलग जगह पूरा संदेश दिए गए हैं, उनके देशों में मिले हुए हैं। मैं भी अभी, आप सबको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके इनिशिएटिव पर यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया हुआ है, मालूम है ना सबको। तो इंटरनेशनल योगा डे तो मुझे भी दोनों साल 15 और 16 में विदेश में इन दिनों रहने का मौका मिला। तो 2015 में जब मैं वहां पर था कैरेबियन कंट्रीज के टूर पर, तो वहां मैंने देखा कि भारत में तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं एक दिन, लेकिन विदेशों में अधिकतर इंटरनेशनल वीक ऑफ योगा, एक सप्ताह तक लगातार योग के कार्यक्रम होते हैं। और वो कार्यक्रम साधारण नहीं, 3 जगह मैंने खुद देखा, त्रिनिदाद, गयाना और सुरीनाम में, वहां के राष्ट्रपति वर्किंग प्रेजेंट एक जगह वो थे, एक जगह प्राइम मिनिस्टर पूरा कैबिनेट के साथ, 2 जगह एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और वहां पर इन सब का भी वहां पर आना हुआ। तो भाव क्या है कहने का कि योगा जो भारत की देन है विश्व को, तो हमारा उतना ध्यान नहीं है और विश्व का ध्यान पूरा इस तरफ बहुत खींच रहा है। तो आज आवश्यकता ऐसा न हो दिया तले अंधेरा वाली बात, भारत की देन है, यहां पर हम उसका उतना लाभ न ले सकें योग का, और दुनिया वाले उसका लाभ लेकर के बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आवश्यकता इस चीज की है। ये अलग अलग जगह के कुछ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं और ये कुछ हाईलाइट्स वगैरह है। दादी प्रकाशमणि जी जो इस संस्था की पहले चीफ थी, वो चीफ का यहाँ पर ये फोटो, इसमें ये बताया गया है, और इसके अंदर ये है, ये दादी जी का है। तो यूनाइटेड नेशन का प्लेनरी सेशन को दादी जी ने संबोधित किया था वहां पर, और वो प्लेनरी सेशन में दादी जी ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, विवेकानंद का जब 100वां वर्ष था और वहां पर, तो उस समय भारत की ही ये एकमात्र दादी जी थे जिनको प्लेनरी सेशन हेड करने का मौका मिला, और वहां पर उन्होंने इस बात के ऊपर विशेष प्रकाश डाला। एक ये मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील, ये हमारा कॉपरेशन था, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, 1986 में ये प्रोग्राम हमारे नियमित चले और इस कारण से अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स इस संस्था को काफी मिले हैं। दादी प्रकाशमणि जी को, जो फॉर्मर चीफ थे, उन्हें उदयपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डीलिट की डिग्री से सम्मानित किया था और ये उस समय का एक फोटो है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके साथ ये दादी जी किस प्रकार से खड़े हुए हैं, और ये यूनाइटेड नेशन के ही ऑफिस बियरर, उनकी तरफ से इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड दादी जी को दिया जा रहा है। पीस मैसेंजर, ये जैसे नोबेल पीस प्राइज होता है, ऐसे पीस मैसेंजर अवार्ड 1987 में दादी जी को दिया गया। और जो वर्तमान समय दादी जानकी जी चीफ हैं, तो उनका ब्रेन का प्रयोग उसमें करे देखा गया वैज्ञानिकों ने, और उन्हें डिक्लेयर किया कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ब्रेन इन द वर्ल्ड। उनका ईईजी निकाला गया अलग अलग, और दादी जी को कहा गया हाँ अब आप बोलिए, बात कीजिए, अच्छा आराम कीजिए, सोइए, अब भाषण करिए। हर परिस्थिति में उनका मेंटल ईईजी जो था बहुत हद तक एक जैसा था, थीटा डेल्टा वेव्स निकालता हुआ, यानी कि कर्म योगी का वास्तविक पहचान, कर्म भी कर रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, लेकिन योग में भी स्थित है। इसलिए मेंटल वेव थीटा और डेल्टा वेव्स माइंड से निकलते थे, तो ये अलग अलग देशों में प्रयोग करके वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। ये ब्रह्मा बाबा के 100वें वर्ष में 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कमेमोरेटिव स्टैम्प पिताश्री ब्रह्मा बाबा का निकाला था, वो ये बताया गया है। और हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में ओम शांति भवन, ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर, ये नीचे शांति वन में रेजिडेंशियल कैपेसिटी अब तो और भी बढ़ गई है। ये एक पिलर लेस हॉल है, आप में से शायद आते समय कईयों ने देखा हो, न देखा हो तो जाते वक्त देखेंगे, डायमंड जुबली हॉल वहां का है, 25,000 की कैपेसिटी का हॉल, पिलर लेस हॉल। और वहां पर जब इंटेंस मेडिटेशन प्रोग्राम होता है, परमात्मा से मिलन के कार्यक्रम होते हैं, तो वो अधिकतर वहीं पर ही सारे चलते हैं। और यही फैसिलिटीज उसी को ही डायमंड हॉल का जो मैं आपको बताया, तो इतना कैपेसिटी का हॉल वो वहां पर बताया गया है, डायमंड हॉल। ये नीचे का एक दृश्य है, साथ ही साथ ये वहीं पर शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां पर अभी वर्तमान समय मीडिया कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। और यहां पर जो रहने का ना दादी जी मीटिंग हॉल है एक, ये दादी जी मीटिंग हॉल, ये भी एक 600 की कैपेसिटी का हॉल है। ये वहां पर प्रकाश स्तंभ बनाया गया है दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में, ये प्रकाश स्तंभ है। ये वहां एक ओम म्यूजियम है, स्पिरिचुअल म्यूजियम, आर्टिस्टिक मॉडल्स वगैरह है। यहां पर भी आपने शायद म्यूजियम देखा होगा, एक ज्ञान सरोवर के अंदर म्यूजियम है और एक नक्की लेक के पास, तो ये म्यूजियम वहां पर देखने की बात है। इस रीति से ये यहां पर ना ये डाइनिंग हॉल वगैरह, ब्रह्मा कुमारी, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी को सब विश्व वाले बोलते हैं, और आपको ये खुशी होगी कि हम लोग मैक्सिमम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। केवल पानी ही गर्म नहीं होता, बल्कि हमारा टोटल सिस्टम, पूरा भोजन सोलर एनर्जी से बनता है, यहां पर भी, ज्ञान सरोवर में भी, और नीचे शांति वन में भी। साथ ही साथ हमारा इनके साथ हम इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, और उससे हमारा कंप्लीट टेलीफोन सिस्टम और इमरजेंसी लाइट वगैरह सब हमारी ये सोलर एनर्जी से ही इल्यूमिनेट होती है। ये सोलर एनर्जी से कंसर्न कुछ वहां पर शांतिवन और यहां के चित्र हैं। और ये सोलर पावर को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये अभी वहां पर एक सोलर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन रहा है, और आशा है हमें कि अगले आने वाले 6 महीनों में हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, लगभग 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं। सारा सब वहाँ पैनल लग चुके हैं, केवल टर्माइन का इंस्टॉलेशन बाकी है, वो हो रहा है और ये विश्व भर में अपने आप में एक पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि ये सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, तो जितना हमारा किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट होता है उसके उसको हम रिसाइकिल करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे सब कॉम्प्लेक्स में काफी ग्रीनरी देखने में आती है। तो ये ग्रीनरी आप देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं, बहुत जगह एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है थॉट ट्रीटमेंट प्लांट। यहां पर ये जो योग सिखाते हैं कैसे हम निगेटिव थॉट्स को रिसाइकिल करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि न चाहते हुए भी निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिविटी के थॉट, लेकिन उसको हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, इन सब थॉट्स में हम कन्वर्ट कर सकें, वो टेक्नोलॉजी, वो बात विशेष राजयोग के माध्यम से यहाँ पर बताई जाती है। नीचे ही शांतिवन में एक तपस्या धाम है, मेडिटेशन रूम, यह उसका एक चित्रण किया गया है, और वहाँ अभी तो और भी ज्यादा, पहले 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था शांतिवन में है और लगभग 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था मनमोहनी वन में, जो बाद में नया कॉम्प्लेक्स मनमोहनी वन बना है। ये अलग अलग एकोमोडेशंस हैं, ऋषि भवन, कमल कुंज आदि आदि वहां पर, और इनके साथ साथ ये जो मैं बता रहा था आपको मनमोहनी वन, मनमोहनी हमारा उन दादी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी जिन्होंने 1983 में शरीर छोड़ा, तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ दीदी मनमोहनी जी थे, उनके नाम पर ये दीदी मनमोहनी वन ये पूरा का पूरा बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये उसका एक व्यू है मनमोहनी वन में, ये सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस वहां पर किस प्रकार से है, ये मनमोहनी वन के ही ये सब शांति वन नीचे वो है। ये यहाँ पर ज्ञान सरोवर आपने देखा होगा, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, इसी को ही मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। वहां तो जैसे तिब्बत में लेक है ना, कौन सा, जिसमें कि ये कहा जाता है कि मनुष्य जब नहाते हैं, स्नान करते हैं तो परी और परीजादे बन जाते हैं वास्तव में। तो ये बात है ज्ञान सरोवर की ही, कि ज्ञान सरोवर में जो हमारे ज्ञान के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर जो इस ज्ञान मार्ग में डुबकी लगाता है तो वो कोई स्थूल शारीरिक रीति से परीजादे नहीं बन जाते, लेकिन बौद्धिक रीति से उनके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और वो जैसे परीजादे जैसे बन जाते हैं, यानी ज्ञान और योग के पंख उन्हें मिल जाते हैं। ये वहां पर है ज्ञान सरोवर, शायद आप लोगों ने देखा हो ये ज्ञान सरोवर के दृश्य, और ये वहां का ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है और वो इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग, ये उसका दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स है बहुत एक विशेष है, पूरे भारत भर से, विश्व भर से लोग आते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर 25 लाख से अधिक टूरिस्ट हर साल आते हैं और ये देखते हैं। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, और उसके अंदर हमारी लगभग 20 विंग्स चलती हैं। ये सब उन्हीं विंग्स के ही फोटो हैं, एजुकेशन विंग, वुमेन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेस इंडस्ट्री, पॉलिटिशियन, मीडिया, यूथ, जूरिस्ट, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल विंग, रूरल विंग, रिलीजियस विंग, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट आदि आदि, ये अलग अलग विंग्स हैं। ये पर्पज ये है इन विंग्स के द्वारा ज्ञान सरोवर में हमारी अलग अलग कॉन्फ्रेंस, अभी वर्तमान समय एक स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर वेविंग कॉन्फ्रेंस कल से वहां पर शुरू हुई है और वह कार्यक्रम चल रहा है। तो अलग अलग कार्यक्रम यहां पर नियमित रीति से, इसके अंदर यह राजयोग बताया गया था ना, ए जर्नी विद इन, अंदर जाकर के देखना कि क्या है। बड़ा मुझे याद आता है अक्सर करके, होता क्या है जीवन में, हम ना एक ब्लेम गेम, एक खेल खेलते हैं। बस कोई भी बात हो जाती है हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसने ऐसा करा, उसने ये किया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्सा किया, उसने ये किया तो उसके रिएक्शन में मैंने उसे मारा, आदि आदि। तो आवश्यकता है अपने अंदर झांकने की। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, गालिब की दो लाइन है कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, प्रॉब्लम कमी कमजोरी हमारे अंदर होती है, हम समझते हैं शायद आईना ऐसा दिखा रहा है, बाहर की तरफ हम वो करते हैं पुरुषार्थ, लेकिन आवश्यकता है अंदर झांकने की। इसीलिए अंदर जितना झांकते चलेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। और गीता में भी महावाक्य है ना कि भाई राजयोग, योग का मतलब जो योग सीखे वो योगी, तो योगी के लक्षण भी बताए हैं। हाँ? क्या बताए हैं, हर परिस्थिति में योगी जो समान रहता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, हार जीत, विपरीत परिस्थितियों में योगी की समान रहे। तो इसी बात को कहा है, जब भी हर मनुष्य जीत में तो सब खुश होते हैं लेकिन हार में भी जीवन में खुशी रहे। कोई मान सम्मान मिलता है उसमें तो सब प्रसन्न होते हैं लेकिन अपमान हो उसमें भी हमारी मानसिक स्थिति वैसी बनी रहे। इसने बड़ा अच्छा किसी कवि ने कहा है, गौर फरमाइएगा, कोई भी होता है रिस्पेक्ट करते हैं तो उसे फूल देते हैं, गुलदस्ता वगैरह ना, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुना होगा आपने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन के अंदर जीतने पर तो सभी खुश होते हैं लेकिन जीवन में कभी हार हो, दुख आए, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा मेंटल स्टेज इतनी स्ट्रांग हो, इक्विलिब्रियम माइंड का बना रहे, हर परिस्थिति में हम मान अपमान, दुख सुख, हार जीत, निंदा स्तुति। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने भी ना, भारत के प्रधानमंत्री कहने पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो करा है, ये तो एक ही बात है। वास्तव में भारत की टेलीपैथी तो कितनी मशहूर रही है कि मन से ही मन का कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, यहां तक कि हम प्रकृति को भी ना अपने मन से वश में किया करते थे। भारत की पुरानी बात, तानसेन, मिर्जा, अरे सुना होगा, तानसेन जब कौन सा राग निकाला करते थे, मलार राग निकालते थे तो वर्षा हो जाती थी, दीपक राग निकालते थे तो दिए जल जाया करते, यानी कि उनका प्रकृति के ऊपर भी इतना ऐसा नियंत्रण था, कंट्रोल था। आवश्यकता यही है कि हम भी अपनी नेचर, प्रकृति को वश करें और ये बाहर की प्रकृति भी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये भी हमारे वश में हो जाएंगे। और इसलिए ये संस्था यूनाइटेड नेशन से भी कनेक्टेड है, UNDPI, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उसके साथ ये कनेक्टेड है। और साथ ही साथ ECOSOC और यूनिसेफ में ये दो गवर्निंग बॉडी हैं अलग अलग, वहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। तो ये जो दो बॉडी हैं, इन दो का ये कंसल्टेटिव स्टेटस का सदस्य भी है यूनाइटेड नेशंस में। तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक विशेषता है। और दादी जी शेयरिंग, जेवियर प्रेस डी सेलर जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन में रह चुके हैं, उनके साथ दादी जी का जब यूएन जाना हुआ वहां पर उनसे भी मिलना हुआ। तो सार यही है, पूरे ज्ञान का सार अंत में कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंज, अगर हम बदलेंगे संसार बदलेगा। हम दूसरे को बदलने का पहले कोशिश करते हैं लेकिन आवश्यकता है अपने को बदलने। तो यह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था का संक्षिप्त में आपको पूरा परिचय दिया। दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी का ये पहली चीफ है, ये वर्तमान में चीफ है, किस प्रकार से स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, ये अगर लक्ष्य रहेगा, आप सब भी यहां से जब जाए यह लक्ष्य रखिए। दूसरे को बताना वो हमारा फर्ज है, लेकिन हम दूसरे को कहें भाई गुस्सा नहीं करो, लेकिन अगर मेरे जीवन में ही इतनी शांति आए और सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी वो सब बोले अरे भाई ये ब्रह्मा कुमारी के यहां से जब से होके माउंट आबू आए हैं इनमें तो गुस्सा ही नहीं आता, इनमें तो बड़ी शांति है, इनका तो जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, तो उसका जो असर होता है वो लास्टिंग होता है, जो मुंह से बोलते हैं वो उतना लास्टिंग नहीं होता है। तो आज आवश्यकता ये है अपने को परिवर्तन करने की। ये कुछ हमारी वेबसाइट है और इस अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। कोई प्रश्न हो किसी के तो पूछ सकते हैं, दो तीन मिनट हैं, पांच मिनट हैं, अगर किसी से संस्था से या ज्ञान के या कोई भी प्रश्न हो बाय चांस तो पूछ सकते हैं। चलिए इसमें ऐसा है कि जो हमारे लोकल ब्रांचेस जितने हैं ना, तो वहां पर एक तो नियमित वहां के हम स्टूडेंट होने चाहिए, जब उनकी अगर रिकमेंडेशन आती है आगे, क्योंकि समर्पित भी उसे कराया जाता है जो रिलेटिवली बंधन मुक्त हो। मानो जिसके जो बैचलर हैं, जो परिवार के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं, जिनका कोई नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को समर्पित कराने के लिए होने के लिए मतलब वन कैन अप्लाई। लेकिन मुख्य बात यह है कि पहले अंदर से उसको हमारी फिलॉसफी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, 5-10 साल तक वहां का स्टूडेंट होना चाहिए, माउंट आबू भी आता जाता रहे, और अगर आवश्यकता हुई तो यहां पर भी जैसा उसके अंदर कला है, जो उसके अंदर मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आर्ट है, उसके बेसिस पर, नीड बेस पर ये कंसिडर किया जाता है। बाकी नॉर्मल केस में यूजुअली समर्पित नहीं। समर्पित माने मन से समर्पण। हम घर गृहस्थी में रहें लेकिन अगर मन से समर्पित हैं वो एज गुड एज समर्पित। ओके, आइए।
धन्यवाद आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, हम उनका फिर से करतल ध्वनि से आभार प्रकट करेंगे। और मैं शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि वे हमारे गोल्डन जुबली, हमारी सेंटर गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है इस साल 2016 में, तो उसका निमंत्रण आपको प्रदान करें, आपका हार्दिक निमंत्रण है। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर।